सहस्रफण मूल कृत्य फण हजार पसार नृप को स्वप्न में फणी ने लिया डस। यह गीत गाती और उछल कूद मचाती हुई एक युवती सुवन्ना पेठ के बाजारों में इधर उधर घूम रही थी। उसके माथे पर लगा बड़ा सा कुमकुम टीका श्वेत बिंदुओं में मिलकर नीचे को खिसक रहा था। हाथ में एक नीम की डाली थी जिसे वह इधर उधर हिला रही थी। बाल बिखरे थे, आंचल के हट जाने का भी उसे भान न था। कभी वह धीरे चलती और कभी सहसा दौड़ने लगती। कई किशोर जिनकी उम्र 10-12 के आसपास थी उसका पीछा कर रहे थे। बाजार के उस छोर पर पीपल के नीचे कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे इधर उधर की बातों में मशगूल थे। उनकी बातचीत में उस युवती की भी चर्चा चल पड़ी। एक ने कहा, फिर से गणाचारी निकल पड़ी। गणाचारी वह स्त्री जो ग्रामीण प्रथा के अनुसार अविवाहित रहती है और जिसे लोग दैवी संकेत का माध्यम मानते हैं, इस कारण वह ग्रामीण समाज में सम्मान्य समझी जाती है। तो एक ने कहा, फिर से गणाचारी निकल पड़ी है। दूसरा बोला, गणाचारी नहीं, गिनाचारी नहीं, यह तो एक खेल है। जवान लड़की लाद संकोच छोड़ गाँव भर भटकती रहे और उसके माँ बाप चुप्पी साधे रहें, यही अचरज की बात है। तीसरे का कहना था, बूढ़े जमींदार साहब की मृत्यु के बारे में इसने 6 महीने पहले ही भविष्यवाणी की थी, यदि वह गणाचारी न होती तो कैसे बता पाती। और फिर चौथा बोला, भैया यह तो अंधे के हाथ का कंकड़ है, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। उस समय 10 घड़ी दिन चढ़ चुका था। गर्मियों की तेज तीखी हवा चल रही थी। स्कूल से छूटे हुए बच्चे बगल में किताबें और तख्तियां दबाए माथे के पसीने को कुर्तों के आस्तीनों से पोंछते हुए घरों की ओर घोड़ों की तरह सरपट दौड़ रहे थे। पेट भर खाना खाकर भगेलों के लड़के, भगेला मतलब खेती में नियुक्त नौकर, पीपल के पत्तों से बने चिरुट का कष्ट लगाते हुए मवेशियों को चरागाहों में ले जा रहे थे। बूढ़ी ग्वालिने उन मवेशियों के छोड़े हुए गोबर के लिए आपस में झगड़ा कर रही थीं। ब्राह्मण स्त्रियां घर का काम काज निपटा कर कंधों पर कपड़े रख तलैया की ओर जा रही थीं। हरिजन स्त्रियां खेत में काम करने वाले अपने पतियों के लिए टोकरों में खाना और पानी ले जा रही थीं। धूप की गर्मी से सवेरा दोपहरी में आप से आप बदल रहा था। डेढ़ पहर की उस धूप में धीरे धीरे उष्णता बढ़ रही थी। हवा के झोंके भी गर्म थे। तपती हुई वह हवा गणाचारी को सहन न हुई और थोड़ी देर बाद पीपल के नीचे आकर वह उन प्रतिष्ठित सज्जनों के पास बैठ गई। वहां उसका पहुंचना था कि उनकी बातचीत जहां की तहां रुक गई। आज जहां सुवन्ना पेठ बसा है वह सारा प्रांत 300 साल पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा गांव था। गांव में एक गरीब किसान रहता था जो जंगल में लकड़ी काटता और उसे दूर के शहर में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता। एक कपिला गाय भी उसके पास थी। सुंदरता उसकी देखते ही बनती थी। उसकी सारी देह चमचम, ठिगना कद और सींग द्वितीया की चंद्रकोर सरीखे थे। उसके गले में दृष्टिदोष को हटाने वाली रस्सी बंधी थी। जब वह चरने जाती और चरकर घर लौटती तब लोगों की दृष्टि उसी पर गड़ी रहती थी। उस किसान के लिए वह कपिला गाय मानो आंगन में बधी हुई नंदिनी थी। उसके प्यारे बच्चों के लिए तो वरदान ही थी वह। किसान 1000 आंखों से उसकी रखवाली करता। रोज सवेरे वह कपिला घड़ा भर दूध देकर जंगल में चरने जाती और रात को लौटकर फिर से घड़ा भर देती। कपिला ही किसान के जीवन के जीवन निर्वाह का सहारा थी। अलग से खेती बाड़ी की उसे जरूरत ही नहीं होती थी। महालक्ष्मी की तरह जब गाय आती जाती उसे देखकर किसान की आंखें मानो चांदनी में जुड़ा जाती। एक दिन शाम को गाय जंगल से घर लौटी तो किसान की बहू ने उसे बांध दिया। बछड़े को भी बांधा और दूध दुहने के लिए गाय की ओर उसने जो ही देखा, 10 एकड़ में उगी हुई फसल के ढेर सा उभरा रहने वाला उसका थन आज ढीला ढाला और खाली खाली दिख रहा था। इसी उधेड़बुन में बहू भीतर से पानी ले आई और बछड़े को खोल दिया, लेकिन गाय ने बछड़े को पास तक नहीं फटकने दिया। इस पर बहू ने उसके पैरों में बंधन डालना चाहा, पर गाय ने यह भी नहीं करने दिया। किसान बहू ने जब जबरदस्ती दूध दुहना चाहा तो गाय ने लात लगाई। मालकिन मन ही मन चिंतित हो उठी, सोचने लगी, मेरी गाय इतनी सीधी, सगी माई जैसी, फिर भला आज इसने लात क्यों लगाई। इतने में किसान भी आ पहुंचा। बहू ने उसे गाय का सारा हाल कह सुनाया। फिर गाय पर से दीठ उतारी गई, जूठे पत्तलों को गाय पर से उतार कर जला दिया गया। गाय ने फिर भी दूध नहीं दिया। तब किसान ने सोचा, ज़रूर किसी दुश्मन ने जंगल में ही इसे दूह लिया। शत्रुओं की यहाँ कौन कमी है, कई लोगों से मेरी अनबन है। यह सोचकर किसान चुप हो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल हुआ। गाय घर लौटी, किसान ने दूहना चाहा और गाय ने फिर लात लगाई। तब किसान आग बबूला हो उठा, उसने चरवाहे को बुलाकर खूब पीटा। बेचारा चरवाहा कहने लगा, मालिक, मैं दिन भर उसे लगातार देखता रहा, एक बार ही कबीला मेरी नज़र बचाकर आधे घंटे तक गायब रहे, बस मैं और कुछ नहीं जानता। किसान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस दिन और दूसरे दिन उसके बच्चों ने दही के लिए खूब रार भी मचाई। गाय ने 4-5 दिन लगातार दूध नहीं दिया। किसान ने उसे एक दिन घर में बांध रखा, परंतु दिन भर गाय बेहद छटपटाती रही। फिर उसका करुण आक्रंदन सुनकर किसान ने उसे छोड़ दिया। शाम को वह घर लौटी, मगर दूध नहीं दिया। परिवार की आजीविका का साधन इस प्रकार निरुपयोगी हुआ देख किसान पागल सा हो गया। गहन चिंताओं के बीच उसे एक उपाय सूझा। दूसरे दिन वह अपना सारा काम छोड़कर गाय के साथ साथ खुद जंगल में चला गया। दिन भर अपनी दृष्टि गाय पर गड़ाए रखी और उसी का पीछा करता रहा। सांझ होने को आई, मवेशियों को घर लौटाकर ले जाने का समय आया। बछड़े को ले आने के लिए किसान कुछ ही दूर गया था कि इतने में गाय गायब हो गई। हैरान होकर किसान ने उसे खोजना शुरू किया, वृक्षों की ओट में, लता कुंजों के पीछे, हर तरफ, पर गाय का कहीं पता न चला। किसान तब निराश हो उठा। कोई आध घंटे बाद गाय दूर पेड़ों के झुरमुट से आती दिख पड़ी। किसान ने देखा, उसके थनों में दूध बिल्कुल न था। थन नीरस लग रहे थे, रस चूस कर फेंकी हुई आम की गुठली की तरह। किसान ने झुरमुट में जाकर ढूंढा, आसपास छान मारा, पर उसे कुछ भी दिखाई न दिया। बेचारा क्या करता, गाय और बछड़े को लेकर उल्टे पांव घर पहुंचा। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। सोचने लगा, यह कैसा माया जाल है। देखते देखते गाय गायब हुई, कहाँ चली गई, पेड़ों के उस झुरमुट से क्यों निकली, वहां तो कोई भी नहीं था। अजब है यह, जरूर कोई गड़बड़ है। इसी उहापोह में सारी रात बीत गई। दूसरे दिन किसान फिर गाय के साथ जंगल गया। उस दिन फिर वही हुआ। फिर तीसरे दिन उसने सोचा कि आज तनिक भी असावधानी से काम नहीं चलेगा। उसने पल भर के लिए भी गाय को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दिया। उस रोज कपिला उसकी नज़र से न बच सकी। विवश होकर शाम को अपने मालिक के पीछे घर लौट चली। जाते जाते एकाएक वह वृक्षों की ओट में सांप के एक बिल के पास आ खड़ी हुई। किसान यह सब देख रहा था। वह पास के एक लता कुंज में छिप गया। वहां से उसे गाय साफ दिखाई दे रही थी। उस बिल से एक दिव्य सर्प बाहर आया और मुंह खोल कपिला के थनों के पास अपना फण पसार कर खड़ा हो गया। यह देखते ही किसान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने धीरज धरकर अपने सिर की पगड़ी उतारी और जमीन पर रखकर सर्पराज को प्रणाम किया। फिर उसने देखा कपिला के थनों से दूध की धार बह निकली। अवश्य ही सर्पराज दूध पी रहे होंगे, किसान ने सोचा। इस दृश्य का वर्णन वह अपनी पत्नी से अवश्य करेगा। उसने फिर देखा सर्पराज के एक नहीं, दो सिर थे। किसान ने सोचा, इस अद्भुत दृश्य का वर्णन मैं सारे गाँव में करूंगा। उसने फिर देखा तो उसे सर्पराज के चार सिर दिखाई पड़े। तब तो किसान का सिर चकराने लगा, वह वहीं बेसुध पड़ गया। थोड़ी देर बाद जब आंखें खुली तो गाय उसके पास खड़ी थी। फिर वह धीरे से उठा और घर लौटा। गाय भी उसके पीछे चल रही थी। किसान को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गाय का एक एक पग उसके अपने ही प्राणों पर पड़ रहा हो। घर पहुंचा, उसके तो चेहरे को देखते ही उसकी पत्नी ताड़ गई कि जरूर कुछ विशेष घटा है। किसान ने आप ही सारा हाल कह सुनाया। देखते ही देखते सारी बात चारों ओर फैल गई और गांव के लोग भी किसान के घर जमा होने लगे। उन लोगों ने गाय को खूब देखा परखा, पर किसी को कोई उपाय न सूझा। उसी रात किसान ने सपने में हजार सिर वाले सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी को देखा। सपने में स्वामी ने अपने लिए एक मंदिर बनवाने का किसान को आदेश दिया, ठीक उसी जगह जहाँ कपिला का दूध स्वामी ने पिया था। दूसरे दिन किसान ने गांव वालों को अपने स्वप्न का सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर सबके सब भक्ति भाव से झूम उठे, लेकिन उस गांव में प्रायः सभी गरीब थे। मंदिर बनवाने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, तथापि किसान ने अपनी सारी जायदाद बेचकर मंदिर बनवाने का संकल्प किया। लेकिन उसकी जायदाद थी ही कितनी, एक गाय और एक झोंपड़ी। बस गाय तो पहले ही भगवान को समर्पित हो चुकी थी, बची झोपड़ी। अब उसे खरीदने वाला कौन था? यदि कोई खरीदता भी तो शायद 3 रुपये भी न मिलते। भगवान के लिए मंदिर तो क्या, एक नई झोपड़ी भी नहीं बन सकती थी, लेकिन और किया क्या जा सकता था। दूसरी ओर स्वामी की महिमा गांव वालों को पग पग पर प्रकट होने लगी। गांव के मुखिया का बेटा बीमार पड़ा, उसके सारे शरीर पर फोड़े निकल आए। स्वामी की मन्नत मांगने पर तुरंत रोग कम हुआ। एक स्त्री 10 वर्ष से कान की टीस से पीड़ित थी, स्वामी के नाम दीपदान करने पर उसकी भी पीड़ा कम हो गई। स्वामी की महिमा और प्रसिद्धि दिनों दिन आसपास फैलती गई और लोग बड़ी संख्या में वहां आने लगे। वहां से 7-8 मील दूर गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी थोड़ी सी जायदाद थी पर वह निसंतान था। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि उसके संतान होगी तो वह स्वामी के सानिध्य में आकर रहेगा और मंदिर बनवाने का भरसक प्रयत्न करेगा। दूसरे ही वर्ष ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उनके यहाँ लड़का हुआ। ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम रखा नागेश्वर शास्त्री और अपनी सारी जायदाद लेकर स्वामी की सेवा में रहने लगा। मंदिर बनवाने का भी उसने बीड़ा उठाया। वह ब्राह्मण पर्याप्त अध्ययन कर चुका था, ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र का वह ख्याति प्राप्त विद्वान था। उसकी ख्याति सुनकर एक दिन एक धनी व्यक्ति उसके पास आया। उस व्यक्ति की आयु 50 वर्ष की भी थी। बड़ी बड़ी मूछें, चौड़ी चौड़ी लाली उगलती हुई विशाल आँखें, लंबे हाथ, भरी भरी देह, देखने वालों को सहसा वह एक महान योगी सा भासता था। वैसे 50 वर्ष तक वह एक सामान्य गृहस्थ रह चुका था, लेकिन उसके बाद से ही उसके भाग फिरे थे। असल में 5-6 जोड़ी बैलों के सहारे गाड़ी को भाड़े पर चलाकर वह जीवन निर्वाह करता आया था। अंग्रेज लोग जब टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने गए तब इसकी गाड़ी भी भाड़े पर ले गए थे, और जब टीपू पर विजय प्राप्त करके वे श्रीरंगपुर लौटने लगे तब इस गाड़ीवान ने भी लूट खसोट में अपने हिस्से की मांग की। अंग्रेजों ने उसे किले का एक कमरा दिखाया और अनजाने में कहा कि उस कमरे में जो कुछ हो ले लेना। गाड़ीवान के तो भाग खुलने को थे ही, वह कमरा अशर्फियों से भरा निकला। गाड़ीवान ने अशर्फियों को छिपा दिया और बड़े जतन से उन्हें बैलों पर लाद कर अपने घर ले आया। गाड़ीवान का नाम था वीरन्ना। उसकी इच्छा थी कि उस धन से एक बड़ा किला बांधकर खुद वहां का जमींदार बन जाए। तब उसने खोजबीन शुरू की कि किले के निर्माण के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, और यही पूछने के लिए वह उस ब्राह्मण के पास पहुंचा। ब्राह्मण को भी संयोग से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा अवश्य ही भगवान ने इसी लक्ष्मीपुत्र को मेरे पास भेजा है। ब्राह्मण ने वीरन्ना को बताया कि किला बनवाने के लिए वही स्थान सबसे अच्छा होगा जहाँ सुब्रमण्येश्वर स्वामी उस किले के क्षेत्रपाल बन सकते हों। वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाएगा और हाँ, एक बड़ा शहर भी आबाद होगा जो 3-4 शताब्दियों तक अत्यंत उन्नत दशा को प्राप्त होगा। ब्राह्मण की बात वीरन्ना को जची और उसने एक मुहूर्त पर अपने किले और स्वामी के मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। इतने में एक और अद्भुत घटना घटी। जिस गाय का दूध स्वामी पी रहे थे उसके मालिक किसान के एक ही लड़की थी। वह उम्र की 16वीं देहरी पार कर रही थी पर उस विवाह उसका नहीं हुआ था। कभी कभी सुब्रमण्येश्वर स्वामी का उस लड़की पर आवाहन होता था। किसान ने कई बार उसके ब्याह की तैयारियां करनी चाही, परंतु ब्याह की बात चलते ही लड़की पछाड़ खाकर बेसुध हो गिर पड़ती। यह देखकर माता पिता अपनी भूल स्वीकार करते और स्वामी से क्षमा मांगते, और तब कहीं लड़की होश में आती। जब कोई ऐसी विचित्र घटना घटती तो कुछ लोग अविश्वास से प्रकट करने लगते, पर लोगों पर छोटी बड़ी मुसीबतें भी आ पड़ती। यही वजह थी कि गणाचारी के प्रति अधिकतर लोगों की श्रद्धा प्रबल होती गई। उस गांव का नाम सुबन्ना पेठ पड़ा। धीरे धीरे वह एक बड़ा गांव बन गया। मंदिर और किले का निर्माण 10 बरस तक चलता रहा। अपने में दोनों ही अद्वितीय थे, पर सुंदरता में एक दूसरे को मात करते दिखते थे। दूर दूर से लोग आ आकर मंदिर और किले को देखते। वीरन्ना नायडू बचपन से विष्णु भक्त थे, अतएव उन्होंने वेणुगोपाल स्वामी का भी मंदिर अलग बनवाया। स्वामी के लिए नित्य भोग, कल्याणोत्सव वह उत्सव होता है जिसमें भगवान का विवाह रचाया जाता है, तथा अन्य पूजाओं के लिए जमींदार ने यथोचित प्रबंध किया। जमींदार के कृपा पात्र बनकर अनेकानेक लोग इसी गांव में आ बसे। अनेक प्रसिद्ध विद्वान आए, देवदासियां आईं, वैष्णव भक्त पधारे, शिव के अनुयायी भी आ बसे, और जमींदार ने सभी के लिए उचित प्रबंध किया। 10 बरस पहले जहाँ एक छोटा सा गांव था, वहाँ आज देवताओं को आश्रय मिला, भक्तों को संबल, धर्म को वास स्थान और मुक्ति को मार्ग। सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी बड़े दयालु थे। आने वाली दुर्घटनाओं का संकेत वे गणाचारी के मुख से करा दिया करते थे, साथ ही उन दुर्घटनाओं के परिहार के मार्ग भी सुझाते और दोषियों को दंड देते थे। यही कारण था कि स्वामी का नाम सुनते ही सारे लोग कांप उठते थे। अतः सहज ही भक्ति धारा को गांव में भरपूर बढ़ावा मिल रहा था। वीरन्ना नायडू का बेटा था नागन्ना नायडू। बाप के मरने पर वही जमींदार बना। उधर ब्राह्मण का भी देहांत हुआ और उसका बेटा नागेश्वर शास्त्री भी मुखिया बन गया। पहली गणाचारी भी चल बसी और उसके स्थान पर उसके भाई की लड़की गणाचारी बन गई। उस लड़की के माता पिता भी उसका ब्याह रचाना चाहते थे, लेकिन ब्याह की बात छिड़ते ही वह भी पहली की तरह बेहोश हो जाती, इसलिए उसे भी कुंवारी ही रहना पड़ा। इस तरह उस किसान के परिवार में एक के बाद एक स्त्री संतान का ही जन्म लेना और उसका सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी की गणाचारी बनना अनुवंशिक क्रम सा बन गया था। वीरन्ना नायडू के वंशज स्वामी के प्रतिनिधि थे और ब्राह्मण के वंशज प्रचारक। किसान के वंश में जन्म लेने वाली लड़कियां स्वामी के व्याख्याता का काम करती थीं, यानी धरती और आकाश के बीच, स्वर्ग और नरक के बीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच एक प्रकार का अस्थायी संबंध स्थापित हो गया। ऊपर भगवान थे और नीचे राजा और ब्राह्मण, उन दोनों के बीच गणाचारी एक अटूट कड़ी थी। यह था चौखंभा धर्म मंडल। इसके खंभे थे भगवान, जमींदार, ब्राह्मण और गणाचारी। इसी मंडप में सुबन्ना पेट के लोग उत्सव मनाया करते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी कदली वृक्ष इन चारों खंभों में बंधे थे। चारों खंभे हरे भरे, शुभ सूचक और शोभा को लिए हुए थे। यह धर्म मंडप 3 शताब्दियों तक निरंतर अव्यवहित रूप में शोभायमान रहा। इन 3 सदियों में सहस्र फण वाले नागेश्वर स्वामी सुवन्ना पेठ पर अपने 1000 फणों की छत्रछाया पसारे। उस ठंडी छाया में गांव वालों को सुख और शांति की थपकियां देते रहे। सारे लोग धर्म और मोक्ष के बीच अर्थ और काम के झूले में सुख की नींद सोते रहे। इसी सुदीर्घ काल में स्वामी के फण लोगों को ठंडी छाया देने के लिए ही खुले, उन्हें डसने के लिए नहीं। स्वामी की 2000 आंखें धर्म से अनुप्राणित चारों दिशाओं को समाधान से देखती हुई प्रशांत ज्योति की वर्षा करती रहीं। एक बार भी उन आंखों से धर्मच्युति पर कुपित रक्त कांति नहीं बरसी। जिस ब्राह्मण ने सुवन्ना पेठ का निर्माण कराया था, उसी का निर्णय था कि गांव 300 वर्ष तक रहेगा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि उस प्रकांड पंडित ने, उस सर्वज्ञ ब्राह्मण ने सुवन्ना पेठ को शाश्वत क्यों नहीं बनाया। उसका उत्तर यही है कि ब्राह्मण सर्वज्ञ अवश्य था पर सर्वाधिकारी नहीं। वास्तु शास्त्र का ज्ञाता अवश्य था पर वास्तु शास्त्र का निर्माता नहीं। शास्त्र का जानकार था पर सृष्टा नहीं। 300 वर्ष बाद सुवन्ना पेठ के नाश का बीजारोपण होगा, यही उस ब्राह्मण का संकेत था। आज की गणाचारी भी यही सूचित कर रही थी कि नाश के हेतुओं का जन्म हो चुका है, लेकिन गाँव में कई लोग गणाचारी के बातों को महत्व नहीं दे रहे थे। गणाचारी पीपल के वृक्ष तले जा बैठी और थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में अपना वही गाना गाने लगी। वहां बैठा हुआ एक युवक सहसा उठा और इशारों से अन्य लोगों के मना करने पर भी बड़ी ढीठाई से गणाचारी के सामने जाकर कहने लगा, क्यों जी गणाचारी, ये पागलपन के गाने क्यों गाती हो? 1000 फण कैसे, राजा को डसना कैसा, सो भी सपने में? अब बंद करो अपना गाना और घर चली जाओ। जवान हो चुकी हो, जाति बिरादरी की नाक कटा रही हो, अब तक ब्याह नहीं हुआ, ब्याह का नाम लेते ही हु हु करती हुई बेसुध पड़ जाती हो, यह सब तुम्हारा ढोंग जान पड़ता है। यदि तुम सचमुच गणाचारी हो तो तुम्हें भी क्यों पसीना निकल आया, तुम भी क्यों थक गई? तुम सचमुच भगवान की गणाचारी हो तो दिखा दो अपनी महत्ता। मैं जो अब तुम्हें फटकार रहा हूँ, देखूँ कि तुम क्या कर लोगी। यह युवक इसी प्रकार बगझक कर रहा था कि लोग उसे जबरदस्ती वहां से घसीट ले गए। कुछ लोग कहने भी लगे, उसने यह अच्छा नहीं किया। कैसा समय आ गया है, हाय, लोगों के दंभ का ठिकाना नहीं रहा। आजकल ये सब छोकरे 16 आने बिगड़ गए हैं, इन्हें सीख देने वाला भी कोई नहीं रहा, और इसी तरह की बातें चल पड़ी। गणाचारी एकदम चुप्पी साधे रही। उसने केवल 1-2 बार सिर उठाकर उस युवक को देखा, एक बार वहां के जमघट को भी निरखा परखा, लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। अंत में घनाचारी अकेली रह गई। दोपहर का समय हो गया। ग्रीष्म की धूप में पीपल के कोमल पत्ते ऐसे चमक रहे थे मानो गेहुआ रंग वाले नागों के फण हों। पत्तों की छोटी छोटी पूंछें ऐसी लग रही थीं मानो सांपों की पसारी हुई जीभें हों। दूर आकाश में सफ़ेद रंग के हल्के हल्के बादल एक दूसरे से ऐसे मिलजुल रहे थे कि जैसे सफ़ेद नाग अपने फण फैलाकर एक दूसरे से खेल रहे हों, कूद रहे हों और किलोले कर रहे हों। धूप की तेजी भी ऐसी दुर्निरीक्ष हो रही थी मानो कोई महाभुजंगराज क्रोध में फुफकारता हुआ फण खोलकर पूंछ के बल खड़ा हो गया हो। गणाचारी उठी और घर की ओर चल पड़ी। उसकी लंबी और अधखुली आंखें काले नाग के अधखुले फण जैसी दिख रही थीं। कनखियों पर पड़ी झुर्रियों की लकीरें काले नाग की जीभों की भांति भयानक मंदहास कर रही थीं। गणाचारी के सामने से एक महापुरुष आ रहा था। उसे देखते ही गणाचारी ने विकृत हास किया और उसकी ओर दौड़ पड़ी। फिर वह अपना वही गाना गाने लगी, फण हजार पसार नृप को स्वप्न में फणी ने लिया डस। गाने के शब्दों का गणाचारी ने कुछ ऐसा उच्चारण किया मानो कोई सर्पराज फुफकार रहा हो।